बाकी बाकी मानदार तो सी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ज़्यादा बाकी नहीं रह गई है, तो हो सकता है हमारी यानी क्लास के टाइम से पहले ही ये मुकम्मल हो जाए। तो इस वजह से पहले से आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है पहले से मौजूद हो या क्लास के दौरान जहन में आए, तो आखिर में जो टाइम बचेगा तो उसके अंदर आप लोग सवाल आज ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जहन में रखें, तो हो सकता है कि क्लास के दौरान आपको कुछ बात याद आ जाए जो कि पूछनी थी। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाअम मिर रब्बिका अता'अन हिसाबा, यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ्फा, لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا। جیسے پہلے جو آیت تھی، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنزلناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما۔ तो पेज नंबर 658 पर हम पढ़ रहे थे सूरह नबा की तफसीर। तो आखिरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी जज़ा अम विफाक़ा की तफसीर पढ़ ली थी। अब जज़ा अम मिर रब का अपॉन हिसाबा के तहत शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यानी ऊपर की जिन नेमतों का जिक्र आया है ये जज़ा है मोमिनीन के लिए और अता है उनके रब की तरफ से अताए कसीर। यहाँ इन नेमतों को अव्वल जजाए आमाल बतलाया, फिर अताए रब्बानी। अताए रब्बानी यानी जजाए आमाल बताया, फिर अताए रब्बानी बताया कि जजा मिन रब्बिका, फिर अताअन हिसाबा। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की अता भी है और अमाल के जज़ा भी है, ये अलग अलग चीज़ें हैं ना। क्योंकि तो इस वजह से कहते हैं कि बज़ाहिर इन दोनों में तजाद है, क्योंकि जज़ा तो उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ के बदले में हो, और अता वो है जो बिला किसी बदले के बतौर इनाम व एहसान। ठीक है, किसी को जो अता किया जाता है ना, तो वो बदले में नहीं अता किया जाता, बल्कि बस अपनी बड़ाई दिखाने के लिए या किसी से खुश हो करके अता कर दिया जाता है एहसान के तौर पर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में तजाद है, तो मुफसरीन जो है वो एक एक लफ्ज़ के तजाद को भी एड्रेस करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो फरमाया कि कुरान करीम ने इन दोनों लफ्ज़ों को यकजा जमा करके इस तरफ इशारा कर दिया कि जन्नत में दाखिल होना और उसकी नेमतें सिर्फ सूरत और ज़ाहिर के एतबार से तो अहले जन्नत के आमाल की जजा है, लेकिन हकीकत के एतबार से वो खालिस अताए रब्बानी है, क्योंकि इंसानी आमाल तो उन नेमतों का भी बदला नहीं बन सकते जो उनको दुनिया में दे दी गई हैं। आखिरत की नेमतों का हुसूल तो सिर्फ हक तआला का फजल व इनाम और अताए महज है, जैसा कि हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक हक तआला का फजल न हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि क्या आप भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता। ठीक है, तो हकीकत तो यही है कि हमारे पास जो इस दुनिया में भी छोटी छोटी नेमतें, जन्नत के मुकाबले में तो ये बहुत ही छोटी छोटी नेमतें हैं इस दुनिया के अंदर, तो इस एक नेमत का भी बदल यानी एक नेमत का भी हम अपने आमाल से बदला नहीं चुका सकते। जैसे कि वो हदीस आपने अक्सर हमारे हजरत के बयान में भी सुनी होगी कि एक बंदा बनी इसराइल का, वो न जाने कितने 100 साल तक इबादत करता रहा और اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ میرا سجدے کی حالت میں انتقال ہو، تو اس کا انتقال بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سجدے کی حالت میں ہی اس کی جان نکالی نکلوائی، رائٹ. تو پھر جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوا، تو چونکہ یہ تو ہے تو یہ فیوچر کا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فیوچر کی بھی کچھ باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے میدان حشر میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان کی کچھ کچھ تفصیلات جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئیں. تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ ہو چکا ہے، اللہ کے نزدیک تو ہو چکا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. یعنی سب کچھ یہ جو زمانہ ہے، ٹائم پیریڈ جس کو کہتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے ہے نا ٹائم پیریڈ، کہ ماضی، حال، مستقبل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ زمانے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ زمانہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا زمانہ بنایا، جس کو کہ ہم ٹائم سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویا کہ یہ ایک مخلوق ہے، یہ ایک اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ماضی، حال، مستقبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کی بہت ساری باتیں بتائیں، جنت کی باتیں بتائیں اور جہنم کی باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حصہ دیا گیا، اس کے یعنی وہ باتیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں اللہ کے حکم سے. تو اس آدمی کو جب پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو. تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ اے اللہ میرے عمل کے بدلے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے فضل، اور یہ کہہ رہا ہے میرا عمل. تو اس طرح سے چلتا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، اس کو جو ہم نے نعمتیں دی ہیں نا، ان میں سے کسی ایک نعمت کا حساب کر لو اس سے. تو اب اس کو جو بینائی کی نعمت دی گئی تھی، دیکھنے کی نعمت اس دنیا میں جو دی گئی تھی نا، اس کو نام اس کو یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، اور اس کی ساری جو عبادتیں تھیں 300 سال یا اس سے بھی زیادہ، ان ساری عبادات کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا. کیونکہ عبادت جو ہے یہ قیامت کے دن ان کو بھی ایک فزیکل ویلیو دے دی جائے گی، ایک ان کی بھی ایک نا ایک مادی شکل بن جائے گی. تو ترازو کے پلڑے کے اندر تو مادی چیزیں تولی جا سکتی ہیں. تو اس دن نا ترازو یا تو اس قسم کا ہوگا کہ غیر مادی چیزوں کو بھی تولنے والا ترازو ہوگا، یا ترازو تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہمارے دنیا کا ترازو ہوتا ہے، لیکن اعمال کو، نیکیوں کو اور گناہوں کو مادی شکل دے دی جائے گی، فزیکل فارم دے دی جائے گی. تو سارے اعمال کو جو ہے دوسرے ترازو کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ جو بینائی والا پلڑا ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ صرف ایک چھوٹی سی آنکھ والی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے، ٹھیک ہے. تو اب اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہے بھی عمل کے بدلے، تو پھر یہ معاملہ ہے کہ تمہارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. تو اگر تم حساب کتاب پر آتے ہو نا، تو پھر تو تمہارے سارے اعمال ختم. تو پھر اس نے پھر رونا شروع کر دیا، اور اے اللہ تیرے فضل سے مجھے جنت عطا فرما دے. ایک اور ورژن اس طرح کے واقعے کا یہ سنا تھا اس آج نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو جنت میں تو ڈالو، لیکن جہنم کے قریب سے گزار کے ڈالو، ٹھیک ہے. جہنم کے قریب سے اس کو لے کر کے جاؤ. تو جب وہ جہنم کے قریب سے لے کے گئے نا، تو جہنم کی اتنی گرمی تھی کہ اس کو لگ گئی شدید پیاس. تو اس نے نا پانی مانگنا شروع کر دیا. تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی پانی کی کیا قیمت چکاؤ گے، ابھی تو تم جنت میں پہنچے نہیں ہو، تو ابھی تو راستے میں ہو، تو تم اس کی قیمت دو. بغیر پرائس کے تو نہیں ملتی کوئی چیز، تو قیمت دو. تو اس کی جب قیمت یہ پوچھے گا نا، تو فرشتے بتائیں گے کہ اس ایک پانی کے پیالے کی قیمت تو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ہیں، لیکن اس کو اتنی پیاس لگی ہوگی کہ یہ اپنے سارے اعمال دینے کے اوپر راضی ہو جائے گا اس ایک پانی کے پیالے کی وجہ سے کے لیے، ٹھیک. تو پھر جب پانی پی لے گا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اتنی گرمی، پھر پیاس. اب تو اس کے پاس کوئی اعمال ہی نہیں. تو اب ہوگا کہ بھائی اعمال ہی کوئی نہیں ہے، اور اعمال کے بدلے تم نے جنت میں جانا تھا، تو اب جاؤ جہنم میں، کیونکہ اب تو تمہارے پاس اعمال ہی نہیں ہے، اب کس بات کے تم جنت مانگ رہے ہو. پھر رونا دھونا شروع کر دے گا، اے اللہ تیرے فضل سے، اے اللہ تیرے فضل سے، اے اللہ تیرے فضل سے. تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ہم ٹکر نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی سپیریورٹی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، ये हमारे वहम गुमान से भी बुलंद है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला तो जो चाहे करें हम उसके ऊपर एतराज़ भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं किया और वैसा क्यों नहीं किया, लेकिन हम करते हैं एतराज़। दुनिया के अंदर मामला होते हैं हमारे साथ, छोटे छोटे घर के अंदर जो मामला होते हैं उनके ऊपर अल्लाह पे एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा क्यों नहीं किया। तो अल्लाह के ऊपर एतराज़ करते हैं ना, बंदे को डरना चाहिए कि किसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हिकमत का कोई अंदाज़ा कर सकते हैं हम। तो जो अल्लाह ताला का फजल है, ये हमारे ऊपर बस ये फजल ही है कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं इस दुनिया के अंदर, फिर अल्लाह ताला ने नेकी की तौफीक दी हुई है। तो यही हकीकत है कि जैसे जैसे अल्लाह ताला की बड़ाई इंसान पे खुलती है ना, उसका एतराज़ वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अल्लाह की मार्फत जैसे जैसे उसके ऊपर खुलती है कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं कितने बड़े हैं, तो अपना उसके जहन की सोचें ही बदल जाती हैं। अब उसका ये कीड़े निकालने वाला वाला दिमाग ही जो है ना वो तब्दील हो जाता है। इस वजह से हमारे मशायख का तरीका यही है कि अल्लाह ताला की मार्फत बयान की जाए, अल्लाह ताला की बड़ाई जो है वो इंसानों के सामने खोली जाए, और जब बड़ाई खुल जाएगी तो खुद ब खुद जो है वो मसले हल हो जाएंगे। आज हम जो है वो बहुत ज्यादा सोचते हैं चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये ऐसे क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, फलाने ने ऐसे क्यों किया और वो ऐसे क्यों करते हैं और ऐसे क्यों नहीं करते, बहुत हमारी मंतकी दिमाग बन चुका है ना, मैथमेटिकल किस्म का दिमाग बन चुका है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल। तो इस मैथमेटिकल दिमाग का जो हल है ना, वो एक तो जो डाउट्स हैं, अगर क्लियर डाउट्स हैं ना, उन क्लियर डाउट्स को यानी जो वाजह डाउट शक हमारे दिमाग के अंदर बैठ चुका है, तो उस डाउट को तो इल्मी तरीके से दूर करना होता है, ठीक है ना, इल्मी तरीके से उस डाउट को उस शक को दूर करना होता है दलील दे करके, ठीक है। लेकिन एक वो होता है कि जो वसवसे हमारे ऊपर गालिब होते हैं, हर वक्त जो है वो हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त जो है ना वो हम बस किसी ना नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी हम डाउट्स में मुब्तला नहीं हुए हैं, लेकिन सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं उम्मत का हाल ऐसा क्यों है, ठीक है ना। अब ये उम्मत का हाल ऐसा क्यों है, मशाइख ने बता दिया कि भाई ऐसा क्यों है, कुरान के अंदर इसका जवाब मौजूद है कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ कुछ लोगों को ये बीमारी होती है बहुत ज्यादा सोचने की, ठीक है ना, वो खामखा के जो है ना वो उनको जवाब दे भी दिया जाता है तो फिर भी वो मुतमईन नहीं होते, वो सोचे चले जाते हैं, सोचे चले जाते हैं। तो ये जो सोचना होता है ना, ये इसका इलाज जो है वो जिक्र और मार्फत के सिवा कुछ नहीं है, इसके अलावा उसके कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसका अब ऐसे बंदे को ना आप जवाब दे करके कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जो जवाब देंगे वो उसी जवाब के ऊपर सोचना शुरू हो जाएगा, राइट, उसी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं यानी उसके कीड़े निकालने के लफ्ज़ तो मैं अभी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन और भी ना उसके यानी गहराई में जाना शुरू हो जाएगा और उसके बारे में जो है वो एक 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 उसकी इक्वेशंस बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बंदे का ना और कोई इलाज नहीं है, इस बंदे का इलाज जो है वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। इसी को कहते हैं सोच की गंदगी, बल्कि फिक्र की गंदगी जिक्र से दूर होती है, फिक्र की गंदगी जिक्र से दूर होती है। अब हम समझते हैं कि फिक्र की गंदगी का मतलब सिर्फ जो है वो नाउज बिल्ला मर्द जो है वो औरतों के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना, और गंदी गंदी जो है वो तस्वीरें जहन में आती रहती हैं और फोहश किस्म के ख्याल जहन में आते रहते हैं, हम सिर्फ इसी को फिक्र की गंदगी समझते हैं, हम सिर्फ इसी को फिक्र की गंदगी समझते हैं। लेकिन ये फिक्र की गंदगी की एक शक्ल है खाली, ठीक है ना, ये फिक्र की गंदगी की सिर्फ एक शक्ल है और ये है भी खाली मर्दों के साथ, ठीक है ना। आम तौर पे जो मर्द शहवत के मारे हुए होते हैं ये सिर्फ उनके साथ है, हर एक के साथ तो ये वाली फिक्र की गंदगी नहीं होती ना, औरतों के साथ उमूमन ये फिक्र की गंदगी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन औरतों के साथ दूसरी फिक्र की गंदगियां होती हैं, ठीक है ना, जैसे दूसरों के बारे में सोचती रहती हैं, उसने ऐसे क्यों कर दिया वैसे क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, ठीक है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं हमेशा। कुछ लोग बैठे बैठे ना बस उनके पास और कोई काम नहीं होता है, वो यही करते रहते हैं, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, मेरे फलाने लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया, है मैं मजलूम बेचारी। तो ये फिक्र की गंदगी, इसको भी फिक्र की गंदगी कहते हैं, ये भी फिक्र की गंदगी है, ठीक है। तो इस फिक्र की गंदगी का इलाज जो है वो जिक्र है, जिक्र के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, इल्म से इसका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्र की गंदगी है, ठीक है। तो खैर अल्लाह ताला की बड़ाई इतनी है कि अल्लाह ताला के साथ जो है वो हम यानी मंतक नहीं चला सकते। अल्लाह ताला का फजल ही है, अपने आप को झुका करके रखना और अल्लाह ताला की नाराजगी से डरते रहना। अब आप में से किसी ने सवाल किया था, अभी तक उनको लिख के जवाब नहीं दे सका हूँ, खशियत क्या होती है? तो वैसे तो कुछ क्लासेस के अंदर खशियत के ऊपर तफसील के साथ बात हो चुकी है, लेकिन गालिबन वो क्लासेस में नहीं थी जिनके अंदर बात हुई थी, तो इस वजह से आपके लिए रिपीट कर देते हैं कि खशियत को साजिश ने समझाया है आप लोगों को क्लासेस के अंदर कि खशियत खौफ को तो कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खौफ होता है कि जिसके अंदर मोहब्बत गालिब होती है। ठीक है, ये एक ऐसा खौफ होता है कि जिसके अंदर मोहब्बत गालिब होती है, क्योंकि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत अपने से बड़े के साथ होती है। अल्लाह ताला के साथ खशियत वाला मामला होता है, तो अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत होती है वो बराबर सराबर की मोहब्बत नहीं होती कि जैसे कोई दो दोस्तों के दरमियान मोहब्बत हो जाए, राइट, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो जाए, या वही दोस्तों वाली मोहब्बत या मियाँ बीवी वाली मोहब्बत, तो ये तो बराबर के लोग होते हैं ना, पियर्स होते हैं, एक लेवल के लोग होते हैं। तो इसके अंदर नाज और नखरे होते हैं, इस वाली मोहब्बत के अंदर परवाह नहीं होती कि अगला बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या हो गया अगर वो नाराज हो गया, वो अगर कुछ अरसा मेरे साथ नहीं मिला, और मियाँ बीवी के दरमियान अगर जरा ज्यादा मसले हो जाएं तो फिर कहते हैं ये जान छोड़ो, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तलाक हो जाएगी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना हिसाब खुद से कर लूंगी, मुझे क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो ये बराबर वाली मोहब्बत में ऐसा होता है, ठीक है ना, उसमें डर खौफ नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि आपके पास भी वही रिसोर्सेज होते हैं, वही वसायल होते हैं जो दूसरे बंदे के पास होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो ऐसे नहीं है ना, अल्लाह ताला और हमारे दरमियान तो कोई मुनासिबत ही नहीं, अल्लाह ताला कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं, अल्लाह ताला सब कुछ है और हम तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत फिर कैसी होगी? अल्लाह ताला के साथ ऐसी मोहब्बत होगी कि जिसके अंदर ये खौफ होगा कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे छोड़ दें, मुझे धुतकार दें, जैसे किसी बादशाह के साथ किसी खान किसी यानी जो 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 भंगी होता है, राइट, जो खाकरोब होता है, उसको अगर बादशाह के साथ दोस्ती हो जाए ना, तो अब ये खाकरोब जो है वो बादशाह की दोस्ती को लाइटली नहीं ले सकता, वो अपने एक एक कदम को सोच करके उठाएगा, एक एक काम सोच करके करेगा कि कहीं मेरा कोई काम बादशाह की नाराजगी का सबब ना बन जाए, अगर बन गया तो भाई बादशाह के लिए मेरी क्या हैसियत है, वो मुझे महल से निकाल देंगे, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, वो मुझसे बात करना छोड़ देंगे, उनके लिए तो खाक रोबे की कमी नहीं है ना, मुल्क के अंदर हजारों भरे हुए, किसी को भी वो हायर कर लेंगे, किसी से भी अपना काम करवा लेंगे, किसी के साथ भी जो है वो अपनी इनायात का मामला बहाल यानी कर लेंगे, तो मेरी तो बादशाह को जरूरत नहीं है, मतलब बादशाह को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे बादशाह की जरूरत है। तो अब ये मोहब्बत भी करता है लेकिन डरता भी रहता है, तो यही मामला खशियत का होता है कि अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत करते हैं ना, वो मोहब्बत भी करते हैं और डरते भी रहते हैं, राइट, दोस्ती भी करते हैं लेकिन हर वक्त डरते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इल्म और इरादे के साथ गुनाह नहीं कर सकते, ये इल्म और इरादे के साथ गुनाह नहीं कर सकते, जिन गुनाहों का इनको पहले से मालूम होता है कि ये गुनाह है तो वो कभी भी वो गुनाह नहीं करते, ठीक है ना, इरादा करके प्लान करके। हाँ, बतकाज़ा बशरियत एहयानन वो गुनाह हो जाते हैं, बगैर सोचे समझे हो जाते हैं कभी, तो उसके ऊपर नादिम और शर्मिंदा होकर के फौरन तौबा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिन गुनाहों का इनको पता नहीं होता लेकिन कोई उनको बताता है कि ये गुनाह है, कहीं से इनको मालूम हो जाता है, तो अब एहतियात करते हैं, बच करके रहते हैं कि कहीं इसमें भी मुबतला ना हो जाए, इस गुनाह के अंदर मुबतला ना हो जाए जिसका उनको पहले पता ना नहीं था। ठीक है, ये कभी जो है वो जिद नहीं करते लोगों से, ये ना ये अपने मौकफ के ऊपर डटे नहीं रहते, अनलेस के इनका मौकफ जो है वो पीछे से कंफर्म्ड हो, ये नहीं डटते अपने जाती मौकफ के ऊपर, ये बड़े सादा लोग होते हैं, ये बड़े, बल्कि किसी ने बड़ी अच्छी तारीफ भी भेजी थी ऐसे लोगों के बारे में, शेयर करने का दिल चाहता था लेकिन बाद में जहन से निकल गया, कि बड़े ही ये ना सीधे सादे लोग होते हैं, शरीफ, बहुत आसान लोग होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं होते, ये सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं होते, बड़े सीधे साधे होते हैं ये लोग। ये खशियत की वजह से होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जो खशियत का ताल्लुक होता है ना, वो इनको ऐसा बना देता है, सीधा कर देता है इनको। ये मकारी नहीं कर सकते किसी के साथ, ये धोखा नहीं दे सकते किसी को, ये झूठ नहीं बोल सकते किसी को, इनकी नीयत खालिस होती है, राइट। इनके अंदर खैरख्वाही भरी हुई होती है, हर एक की खैरख्वाही, अपने की भी खैरख्वाही, गैर की भी खैरख्वाही, नेक की भी खैरख्वाही, बद की भी खैरख्वाही, ये ऐसे खैरख्वाह लोग होते हैं, ठीक है ना। ये खशियत होती है, इसको खशियत कहते हैं। उम्मीद है कि जिन्होंने सवाल पूछा था उनको बात समझ में आ गई होगी। तो ये खशियत ऐसी, ऐसे ताल्लुक को कहते हैं कि जिसके अंदर खौफ भी हो, जिसके अंदर मोहब्बत भी हो, लेकिन साथ साथ खौफ गालिब हो इस मोहब्बत के ऊपर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तो अपने फजल से डालना है भाई, अगर ना हुआ हमारे ऊपर, हमारे पास ये सारी चीजें, तो फिर अल्लाह का फजल कैसे। अगर अपने अपने अमल के ऊपर फरेख्ता हुए हैं और अपने अमल की बुनियाद पर जाना चाहते हैं, तो फिर अपने अमल की बुनियाद पर तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। हम तो इस दुनिया के अंदर एक टके के काबिल नहीं है, एक चीज के काबिल नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक। तो जब इंसान के ऊपर कुछ बुरी कैफियात अगर आना शुरू हो जाए ना, तो अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, मेरे तो अमाल किसी चीज़ के भी काबिल नहीं है, ये तो सारा का सारा आपका फजल है, तो आपने इतना फजल फरमाया है, तो ए अल्लाह बस मुझे पार करवा दीजिए, बस माफ़ कर दीजिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरे अमाल किसी चीज़ के काबिल नहीं है, जन्नत की नेमतों के काबिल नहीं है मेरे अमाल, मैं तो बस आपसे आपकी रहमत मांगता हूँ, बस मगफिरत मांगता हूँ, आफियत का मामला फरमा दीजिए मेरे साथ। तो फरमाया कि जो उनको, अच्छा तो हदीस तो हमने पढ़ ली है, तो आगे फरमाते हैं कि लफ्ज़ हिसाबा के दो मानी हो सकते हैं। आयमे तफसीर में बाज ने पहले, बाज ने पहले और बाज ने दूसरे मानी लिए हैं। पहले मानी यानी हिसाबन अपान काफियन कसीरन के हैं, यानी ऐसी अता जो उसकी जरूरतों के लिए काफी वाफी और कसीर हो। ये मानी इस मुहावरे से माखूज हैं, अहसब तो फुलानन ऐ अतीतुहु मा यकफी ही हत्ता काला हस्बी के, यानी अहसबतो का लफ्ज इस मानी के लिए आता है कि मैंने उसको इतना दिया, ठीक है ना, कि इसके लिए बिल्कुल काफी हो गया, यहाँ तक के बेल, यहाँ तक के सॉरी बोल उठा हस्बी, यानी बस ये मेरे लिए बहुत है, जैसे कहते हैं ना बस बस करेगा, राइट। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी के जो शेख हजरत गुलाम हबीब, पीर गुलाम हबीब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो तर्जुमा किया करते थे कि कौन सी वो आयत है, सूरह दुहा की आयत है ना, उसकी एक आयत का तर्जुमा किया करते थे कि ए मेरे हबीब, मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू बस बस करेगा। इस तरह से वो अपने स्टाइल में तर्जुमा किया करते हैं कि इतना दूंगा कि तू बस बस करेगा, ठीक है। तो ये एक अरबी का मुहावरा है, तो ये फिर मानी बनते हैं कि इतना अल्लाह ताला अता करेंगे बंदे को जन्नत के अंदर कि उसके लिए काफी होगा, कसीर होगा उसके लिए, सफिशेंट। अच्छा, और दूसरे मानी हिसाब के मवाजने और मुकाबले के भी आते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ने इस जगह यही मानी लेकर मतलब आयत का ये करार दिया है कि ये अताए रब्बानी अहले जन्नत पर उनके आमाल के हिसाब से मकबूल होगी। इस अता में दरजात बहिसाब इखलास और एहसान अमल के होंगे, जैसा कि अहादीस सहीह में सहाबा कराम के आमाल का दर्जा बाकी उम्मत के आमाल के मुकाबले में ये करार दिया गया है कि सहाबी अगर अल्लाह की राह में एक मुद खर्च करे जो तकरीबन एक सेर होता है, और गैर सहाबी उहद पहाड़ की बराबर खर्च करे, तो सहाबी का एक मुद उस पहाड़ से बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अपने यानी इंसान की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसके आमाल के की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो सहाबा की सिचुएशन क्या थी भाई, जो हमारी नहीं है, क्यों सहाबा को इतना ज़्यादा मिलेगा। आसान सा जवाब तो उसका यही है कि नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत उनको मैसर थी, और हमें नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत मैसर नहीं है, ठीक है ना। ये तो आसान सा जवाब है, लेकिन उसके ऊपर कोई एतराज़ करेगा कभी, मेरा कसूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मैसर नहीं है, नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, ये तो अल्लाह ताला का फैसला है, तो मुझे तो उतना ही चाहिए जितना उनको मिला, ठीक है। सोहबत बेशक ना मिली, लेकिन जन्नत में तो उतना ही चाहिए जितना उनको मिला, तो भाई फ़र्क क्या है, ठीक है, इसका क्या जवाब देंगे? तो इसका जवाब ये देंगे कि सहाबा को अल्लाह ताला ने जिस सिचुएशन में डाला था ना, जिस आजमाइश में डाला था, वो आजमाइश बहुत बड़ी आजमाइश थी। हम उस आजमाइश के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे तो दौर के अंदर जो हमारे ऊपर छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं, हम तो उनके ऊपर बिलबिलाना शुरू कर देते हैं, राइट, रोना धोना शुरू कर देते हैं, एतराज़ और शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो हमने तो आजमाइशें देखी ही नहीं है असल में। सहाबा के ऊपर क्या आजमाइश आई थी? सहाबा कराम के सामने जो चॉइस पेश की गई थी ना, वो इंतहाई मुश्किल चॉइस थी। जो दीन आया था, जिसको कि उन्होंने इख्तियार किया, ये दीन इस दुनिया से ना सिर्फ अमलन ख़त्म हो चुका था, दीन इस्लाम, उसके आमाल से लोग बिल्कुल ना वाकिफ हो चुके थे आमाल से, बल्कि ये जो सोच थी ना, ये सोच ही बिल्कुल नहीं थी उस दौर जमाने के हिसाब से। यानी पूरा जमाना एक राह पे चल रहा था और नबी अलैहिस्सलाम दूसरी राह लेकर के आए थे, बिल्कुल ऑपोजिट राह। यानी जिसके बारे में अभी जो जो ख्वातीन सूरह कलम की तफसीर सुन रही हैं, तो उन्होंने ये बात अभी पढ़ी भी है सूरह कलम की तफसीर के अंदर, कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को मजनून क्यों कहते थे। बल्कि आप लोगों ने भी, ये जो कल भी तो हम मजनून की बात कर रहे थे ना, कि मजनून क्यों ये लोग कहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे जमाने से टक्कर ली थी, पूरा जमाना जो है वो खिलाफ था, और यानी मामूली बात नहीं थी। तो इसी वजह से तो नबी अलैहिस्सलाम को ये लोग मजनून कहा करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे से दलील दी कि भाई ऐसा शख्स मजनून हो सकता है? ये जो इन्होंने चैलेंज किया है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से जो टक्कर ली है, ये तो अल्लाह की यानी ताईद की वजह से टक्कर ली है। ये कोई अपने दिमाग की खराबी की वजह से नाउजुबिल्ला टक्कर नहीं ली है, अल्लाह की ताईद की वजह से टक्कर ली है। ठीक है, तो अब सहाबा जो थे ना, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इस यानी अजीम तरीन चैलेंज चैलेंज के साथ के हाल में उनका साथ दिया था। ठीक है ना, उस वक्त ये दीन बिल्कुल एक नई चीज थी। बदा गरीब, गरीब कहते हैं बिल्कुल ही यानी अननोन किस्म की चीज। तो ये दीन जो है, ये गरीब के तौर पर इस दुनिया के अंदर आया था। तो सहाबा ने इस वक्त उस दीन को कबूल किया जिस वक्त इसको कबूल करने वाले दुनिया में कहीं और कोई लोग नहीं थे। आज तो हमारे लिए कबूल करना इतना मुश्किल काम नहीं है ना, इवन अगर कोई हिंदू भी मुसलमान होता है, ठीक है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो जो यानी चैलेंज मिलता है वो अपनी फैमिली की तरफ से मिलता है। लेकिन दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं, राइट, बल्कि कहने के हिसाब से तो वो कहते हैं ना 1.3 बिलियन मुस्लिम मौजूद हैं। अब उनमें कितने ईमान वाले रह गए हैं, कितने नहीं रह गए, लेकिन बहरहाल एक नंबर है। बहरहाल 1.3 बिलियन हो या 1 बिलियन हो या 0.5 बिलियन हो, हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ना। तो अब ये हिंदू जो है वो अपने घर को छोड़ करके मुसलमान कम्युनिटी में जा सकता है। हत्ता कि किसी हिंदू का तो वाकया हमारे हजरत ने भी सुनाया था कि उसने फिर जॉब तलाश करी सऊदी अरब में, वो मुसलमान हुआ, उसकी बीवी मुसलमान है, वो सऊदी अरब मूव हो गए और सारी जिंदगी उन्होंने सऊदी अरब में गुजार दी। तो भाई पूरा एक मुल्क मौजूद था ना, एक मुल्क नहीं बल्कि कितने सारे मुल्क मौजूद है मुसलमान, राइट। तो आज के दौर के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, बस बंदे को थोड़ा सा हिम्मत करनी होती है। लेकिन उस दौर में तो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था ना, उस वक्त तो बस तलवार सामने थी, बस अपनी गर्दन कटवाओ, ठीक है ना। मुसलमान होने की सजा ये थी कि बस तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। हम तो अब मुहावरतन बोलते हैं कि मुसलमान को जीने का हक नहीं है, हकीकतन कोई थोड़ी हमें ऐसा मसला है, राइट, लेकिन उस जमाने में तो हकीकतन जीने का हक नहीं था मुसलमानों के पास। तो इस वजह से ना उनके आमाल जो है वो बेशक मिकदार में तादाद में छोटे क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ला यमलिकून मिनहु खिताबा, इस जुमले का ताल्लुक पहले जुमले जज़ा मिन रब्बिका अपान हिसाबा से भी हो सकता है। तो मानी ये होंगे कि हकाला जिसको जो दर्जा सवाब का अता फरमा देंगे, इसमें किसी को गुफ्तगू करने की मजाल नहीं होगी कि फलां को ज़्यादा फलां को कम क्यों दिया गया। और अगर इसको अलहदा जुमला करा दिया जाए तो मतलब ये होगा कि महशर में किसी को बग़ैर इजाज़त हक ताला खिताब करने का इख्तियार नहीं होगा, और ये इजाज़त बाज़ मवाक़िफ़े हशर में होगी, बाज़ में ना होगी। ठीक है ना, यानी हशर के अंदर भी ना बहुत सारे स्टेशन आएंगे, मवाक़िफ़ ठहरने की जगह आएंगी, तो कहीं पर खिताब किया जाएगा लोगों के साथ, कहीं पर खिताब नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कल ही मर्दों को जो तफसीर पढ़ा रहे थे, तो उसमें वो जो मुकदमे वाला वाले वाली हदीस पढ़ी थी, ठीक है, कि जिसमें तमाम अंबिया कराम और उनकी उम्मतों का मुकदमा पेश किया जाएगा। एक तरफ सारे अंबिया कराम होंगे और दूसरी तरफ उनकी सारी उम्मतें होंगी। अंबिया कराम का केस ये होगा कि हमने तो सच सच पैगाम पहुंचा दिया था तौहीद का, इस्लाम का, लेकिन जितनी उम्मतें होंगी ना वो सारी इसका उसको डिनाई कर देंगी। यानी उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई, तुम्हारे पास जब ये दावत आ गई थी तो तुमने क्या किया? तो ये आगे से जवाब क्या देंगे, हमारे पास कोई दावत नहीं आई, इन अंबिया ने हमें कुछ भी नहीं बताया। साफ मुकर जाएंगे सारे के सारे, सारे अदियान वाले मुकर जाएंगे। फिर उसके बाद गवाह पेश किए जाएंगे, और कौन गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा जी, किसी को मालूम है? गवाह पेश किए जाएंगे, कौन गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा? बड़ी नेसेसरी एसेंशियल नॉलेज है ये उम्मतों की बात हो रही है, याद रखिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन इसमें ना इंशाल्लाह एक्चुअली पसंदीदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये ईमान वाला मामला है ना। तो अगर कोई कहे ना कि इंशाल्लाह मैं मोमिन हूँ, तो अगरचे के किसी एक खास नियत के साथ ये एक्सेप्टेबल हो भी सकता है, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है कि इंशाअल्लाह मैं मोमिन हूँ। नहीं, अना मोमिनो हक्कन, राइट, मैं पक्का मोमिन हूँ, मुझे इस बारे में किसी किस्म का शुबा नहीं है, पक्का मोमिन, अपने ईमान के ऊपर पक्का होना है, ठीक है ना। तो इस वजह से ना क़यामत के बारे में अगर आपको कहना है तो अल्लाह के फजल से हम होंगे इंशाअल्लाह, ये इसके अंदर ये यानी ये शर्तिया सेंटेंस नहीं चलता है इसके अंदर, ठीक है, अल्लाह के फजल से हम होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये भी जवाब सही हो सकता था, ठीक है, कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी जो कि हम हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला का फजल होगा, हम मौत तक, और मौत यानी हमारी मौत जो है वो कलमे के ऊपर ही आएगी। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा, और वो कहेंगे कि अम्बिया ने अपना हक अदा कर दिया था। लेकिन काफिर की तो खसलत होती है ना, डिनाई कर देना, कुफर कर देना, कुफर का मतलब ही होता है डिनाइल। तो उसको इंडिविजुअली पेश किया जाए इनफरादी तौर पर, तो भी वो डिनाई कर देगा, नहीं जी मैंने कोई गुनाह नहीं किए, और ये जो गवाह पेश कर रहे हैं ना मेरे नामे अमाल के अंदर जो लिखा हुआ है, तो मैं तो इस नामे अमाल से वाकिफ ही नहीं हूँ। फिर फरिश्ते पेश किए जाएंगे कि फरिश्ते गवाह थे, कहेगा मैंने इन फरिश्तों को देखा ही नहीं कभी, मैं क्या जानूँ ये फरिश्ते कौन है। फिर उसके बाद दूसरे गवाह पेश किए जाएंगे, नहीं जी मैं तो अच्छा वो लोहे महफूज वो पेश कर दिया जाएगा, कहेगा मैं इस लोहे महफूज को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसकी गवाही एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद उसके मुंह पर मोहर लगाई जाएगी और उसके अपने आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये तो इनफरादी मामला होगा काफिर का, लेकिन इज्तिमाई मामला भी यही कि वो डिनाई कर देगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो गलत नहीं किया, ये इनका कसूर है सारा का सारा, ठीक है। दूसरे के ऊपर कसूर डालना ना, ये काफिर की सिफत होती है, ये काफिरों की सिफत होती है, ये ईमान वालों की सिफत नहीं होती। ईमान वाले तो अपने ऊपर कसूर डालते हैं, ठीक है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में से हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, ये ईमान वालों की सिफत होती है, लेकिन काफिर की ये सिफत नहीं होती। अब हम अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि हमारे अंदर कौन सी वाली सिफत है, ईमान वालों की है या काफिरों की सिफत है। बहरहाल, तो जब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के गवाही देगी तो फिर उसके ऊपर ये जरा करेंगे, इनको क्या पता, ये तो वहां थे ही नहीं जब हम थे, ये तो बाद में आए थे। तो फिर उम्मत जवाब देगी कि हमने बेशक मुशाहिदा नहीं किया था, लेकिन हमारे नबी ने बताया था और कुरान के अंदर ये मौजूद थी, और नबी का बताना और कुरान का की गवाही देना हमारे मुशाहिदे से बढ़कर है, राइट। हम अपनी नजर के ऊपर यानी अपनी नजर को गलत कह सकते हैं, लेकिन हम नबी की खबर को गलत नहीं कह सकते, राइट। नजर पर एतमाद नहीं करते हैं ये, राइट, ये खबर पर एतमाद करते हैं, ये हैं ईमान वाले, ठीक है। तो उस मौके के अंदर फिर लोगों को बातचीत करने की इजाजत दी जाएगी, जिसके अंदर वो फिर इस तरह की बातें क्या करेंगे, और दूसरे मौकों के अंदर बातचीत की कोई इजाजत नहीं होगी। यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ्फा, روح سے مراد بعض آئمہ تفسیر کے نزدیک جبرائیل امین ہیں، ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، اور بعض روایات مرفوعہ میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے جو فرشتے نہیں ہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں، یعنی کوئی عجیب مخلوق فرشتوں کے علاوہ. اس تفسیر پر گویا دو صفحے ہوں گی، ایک صف روح کی اور دوسری صف فرشتوں کی. ٹھیک ہے، اب باقی تفصیل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح جو ہیں وہ کون ہوں گے. تو اس روح کے تعریف کے مطابق پھر جو سورہ قدر ہے اس کے اندر بھی روح کا ذکر ہے، تو پھر وہاں پر بھی اسی طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک الگ مخلوق ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی آتا ہے روایات میں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے، اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، خواہ اس طرح کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو دیکھے گا، یا اس طرح کے اعمال محشر میں مجسم اور متشکل ہو کر سامنے آ جائیں گے، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی کہ ان کو ایک اعمال کو فزیکل فارم دے دی جائے گی، جیسے کہ بعض روایات حدیث سے ثابت ہے. اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہو، اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر و برزخ میں مراد ہو، کما فی المظہری. موت کا دن بھی تو قیامت ہی ہوتا ہے نا، بندے کی انفرادی قیامت تو موت کے ساتھ ہو جاتی ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے، ڈسٹ بن جائیں گے، جیسے دھول کی طرح سے اڑ جاتے ہیں نا، اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں گئی دھول. تو اس طریقے سے جانوروں کو دھول کی طریقے سے اڑا دیا جائے گا. اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے، کیونکہ ایک تو جب وہ حساب کتاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کتنا باریکی کے ساتھ حساب لیا جا رہا ہے جانوروں کا، تو اب ان کو اپنے اعمال بھی یاد آنے شروع ہو جائیں گے کہ میں نے یہ بھی کیا تھا، ایسے بھی کیا تھا، ویسے بھی کیا تھا. تو کہیں گے کہ یعنی اب خوف کا تصور تو کریں نا. ٹھیک ہے، اب اسکول کے اندر جو چار بچوں کو کھڑا کر کے جو ایک ایک بچے کے پاس پھر پرنسپل صاحب جا کر کے نا اس سے سوال جواب کر کے پھر اس کو پٹائی لگاتے تھے، ٹھیک ہے، تو باقی بچوں کا جو ہے وہ کیا حشر ہو رہا ہوتا تھا اس وقت. کچھ بچوں کے تو ویسے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سوال جواب ہو رہا ہے اور اس طریقے سے پھر ان کی پٹائی ہو رہی ہے، تو اپنا حشر پھر کیا ہوگا. سوچ سوچ کر کے جو ہے وہ ادھر ہی عذاب، اتنا ہی عذاب کافی ہوتا ہے بندے کے لیے. پھر اس کے بعد جب یہ مٹی ہوتا ہے وہ دیکھیں گے تو پھر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے تو بچ جاتے. نعوذ باللہ منہ، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے. واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تمت سورۃ النبع. تو آپ کی جو ہم نے کلاس شروع کری ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس میں سورہ حجرات مکمل کر کے پھر اس کے بعد سورہ نبع ہم نے شروع کری تھی، جو کہ آپ کے ایک بیچ کی رہ گئی تھی، تو باقی لوگوں کے لیے یہ ریپیٹیشن ہو گیا. اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کری ہے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ آپ سے کسی کے نصاب میں سے ہی جو صورتیں بنتی ہیں نا، تو ان میں سے ہی کسی صورت کو سٹارٹ کر لیا جائے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ابھی اگر کسی کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو عمومی نوعیت کا، یعنی ظاہر پرسنل سوال تو کوئی اس موقع پر نہیں کرے گا، تو آپ کر سکتی ہیں، 15 منٹ کا ٹائم ہے. سلوک سے متعلق کوئی ہو، ذکر مراقبہ یا کوئی اور ایمانیات سے متعلق، یا ان جنرل نہیں ہے جی کوئی سوال کسی کو. अगर किसी ने साजिश को सवाल कोई भेजा था जिसका जवाब देना अभी तक रह गया है, हो सकता है साजिश के जहन से ही निकल गया हो, और आप समझती हैं कि अभी पूछ सकती हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, दो आए हैं, एक प्राइवेटली भेजा है किसी ने तो उनका तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन दूसरा जो है वो छोटा है, तो वो मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ कि इंशाल्लाह किन किन बातों में नहीं बोलना है। यानी ये ईमान ही के बारे में था, ठीक है, कि ईमान के बारे में इंशाल्लाह बोलना जो है ये के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये महमूद नहीं है, ये बात बाई से तारीफ नहीं है। बाकी चूंकि जन्नत में दाखिले का ताल्लुक ईमान के साथ है, क्योंकि जन्नत की के दरवाजे की जो कुंजी है वो कुंजी ईमान है, ठीक है ना, ईमान से दरवाजा खुलता है। तो जन्नत में दाखिला चूंकि ईमान पर मुनहसर है, तो जिस तरह ईमान के लिए इंशाअल्लाह कहना मुनासिब नहीं है, उसी तरीके से जन्नत में दाखिले के लिए भी इंशाअल्लाह कहना मुनासिब ना हुआ, क्योंकि उसका ताल्लुक ईमान के साथ है, ठीक है। तो यही बात, यानी एक एक ही बात बनी ना, दोनों दोनों का मतलब एक ही बात। बाकी ये कि जाहिर है मतलब और तो कोई चीज़ इसको ध्यान नहीं। अच्छा, किसी ने पूछा था कि गुनाहों पर इसरार से क्या मुराद है, गुनाह करके तौबा करना, फिर गुनाह करके तौबा करना, या गुनाह पर गुनाह करना और तौबा ना करना। गुनाह पर इसरार का मतलब जो है ना, वो गुनाह करना नहीं कहलाता। इसरार अलग चीज है, दवाम अलग चीज है, ठीक है। तो गुनाह करना, फिर तौबा कर लेना, फिर उसके बाद गुनाह करना, फिर तौबा कर लेना, ये दवाम कहलाएगा, ये इसरार नहीं कहलाएगा। इसरार लिटरली जुबान से इनकार को कहते हैं, ठीक है। यानी गुनाह पर इसरार से मुराद ये कि मुसर हो जाए कि नहीं, मैंने तो ये करना है, ठीक है ना, आप मुझे कुछ कहते रहे, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने तो करना ही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक औरत जो है वो पर्दा नहीं करती है, अब कोई औरत उसको कहे कि भाई तुम क्यों नहीं पर्दा करती हो, तुम्हें कर लेना चाहिए, तो वो उसके आगे से कोई टेढ़ा सा जवाब दे दे कि नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसी रहूंगी, तो इसको इसरार करना कहेंगे। यानी ये तौबा कर ही नहीं रही ना, ये तो डिनाई कर रही है, इनकार कर रही है, और अपने गुनाह के ऊपर मुसर है, इसको इसरार करना कहते हैं। गुनाह पर मुसर होना उर्दू जुबान का दूसरा अंदाज हो गया इसी बात को कहने के लिए। या ये कि हुज्जत बयान करना गुनाह के, कोई गुनाह नहीं कर रही, ठीक है ना, आप गलत कह रही हैं और मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, उसको भी गुनाह पर इसरार करना कहते हैं, ठीक है। तो तौबा करके फिर तौबा का टूट जाना, फिर तौबा कर लेना, ये गुनाह पर इसरार नहीं कहलाता, बल्कि इसके बारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं कि भाई कयामत के दिन फिर अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में जब इतनी तौबा देखेंगे ना, फिर उस तौबा की बरकत से इसको माफ कर देंगे कि भाई करता रहता था नफ्स और शैतान से मغلوب होकर के, लेकिन तौबा भी तो नहीं छोड़ी ना इसने, तो इस वजह से इसको माफ कर दिया जाएगा। सलाम जी, जब हम नए नई नई दी जब हम नए नए दीनदार होते हैं तो हर सुन्नत, अच्छा, हाँ ये आपने सवाल पूछा था, हर सुन्नत बहुत इखलास के साथ अदा करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद जब हम दीनदार मशहूर हो जाते हैं और कभी सुन्नत पे अमल करने में सुस्ती आ रही हो, तो सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, तो ये ख्याल आते ही हम उस सुन्नत पे अमल कर लेते हैं, तो इस नियत का ख्याल, इस नियत या ख्याल को अपने जहन से कैसे निकाला जा सकता है। यानी जब शुरू शुरू में दीनदार होते हैं तो यानी बड़ी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं सुन्नतों पर अमल, लेकिन फिर बाद में ना ये इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं रहता, लेकिन किसी दूसरे के खौफ से कि वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, तो हम किसी दूसरे के सामने जो है वो सुन्नत पर अमल कर लिया करते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज नहीं करते हैं। तो फिर इस ख्याल को अपने जहन से कैसे निकाला जा सकता है, तो देखें इसमें ना दो बातें हो सकती हैं कि अच्छा, पहले तो इसमें यह है कि जी जब कोई इंसान नया नया दीनदार होता है ना, तो दीन यानी एक तो उसका सबसे पहले क्या होता है, उसका जहन इस बात पर आमादा होता है कि मुझे दीनदार होना चाहिए। ठीक है, ये हम पूरा गोया के प्रोसेस बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि सबसे पहले जहनी तौर पर वो आमादा होता है, तैयार होता है कि मुझे दीन पे चलना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको थोड़ा थोड़ा इल्म हासिल होता है, वैसे वैसे वो उन चीजों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं कि शुरू में हम सुन्नतों पर बहुत इखलास के साथ अमल करते हैं, क्योंकि यही जो जाहिरी सुन्नतें होती हैं ना, यही हमारी नॉलेज में एंटर हो रही होती हैं। ठीक है, बातनी सुन्नतें यानी इखलाकियात और कैफियात, ये तो बड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, ये इब्तिदा में नहीं हम कर सकते, इनके लिए तो बहुत ज्यादा यानी अच्छे खासी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, अपने इखलाक संवार लेना और कैफियत पैदा कर लेना। तो ये तो बाद की बातें, इब्तदाई बातें जाहिरी सुन्नत, मिसाल के तौर पर मिसवाक। ठीक है ना, मिसवाक की जाहिरी सुन्नत है, तो जब दीनदार होते हैं तो मर्दों की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उगना शुरू होती है। ठीक है, और फिर वो मिसवाक जो है वो बड़ी बाकायदगी से खरीद करके लेकर आते हैं, और इसी तरह से चंद जाहिरी सुन्नतें करना शुरू करते हैं। तो ये ऐसे ही होता है कि पहले जहन तैयार होता है, फिर जाहिरी तौर पर जो है वो सुन्नतों पर अमल करना शुरू करते हैं। तो सुन्नतों का जो असर है ना, वो जाहिर से शुरू होता है और आहिस्ता 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 ये बातिन की तरफ सफर करता है। ठीक है ना, यानी इखलाकियात बातनी चीज है, और उससे भी गहरी बातनी चीज एहसासात हैं, महसूसात हैं। ठीक है, तो ऊपर से अंदर की तरफ ये ट्रैवल करता है। अच्छा, अब शुरू में चूंकि हम सिर्फ जो है वो जाहिरी सुन्नतों पर अमल कर रहे होते हैं ना, और हमारा दीन जो होता है वो उतना ही होता है खाली। ठीक है ना, यानी हमारा एंटायर दीन जो है वो सिर्फ उन चंद जाहिरी सुन्नतों पर मुश्तमिल होता है, उससे ज्यादा ना हमें पता होता है और ना हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से ना शुरू में आसान होता है जाहिरी सुन्नतों पर अमल करना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे आपका स्कोप जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वसी होती है, बड़ी होती है, और आपकी जिंदगी के अंदर और दीन भी आना शुरू हो जाता है, और दीन की तफसीलात आनी शुरू हो जाती हैं, और सारी चीजों का भी आपको ख्याल होना शुरू हो जाता है, यानी ये मिसवाद से आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना, ये एक एक चीज को जो आपने इब्तिदा में जो शुरू करी थी ना, हर एक चीज को रिटेन करना बड़ी बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ, ये इतना आसान नहीं रहता। अभी हम नियत की बात कर ही नहीं रहे, अभी हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि आप इखलास के साथ ही आगे बढ़ रही हैं, इखलासी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन इखलास के साथ आगे बढ़ने के बावजूद ये एक-एक चीज के ऊपर अमल करना ये आसान नहीं रहता है, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती हैं ना। शुरू में नौजवान होते हैं, गैर शादीशुदा होते हैं, फिर उसके बाद शादी हो जाती है जी, शौहर की बीवी की जिम्मेदारी आ गई, घर की जिम्मेदारी आ गई, बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, तो क्या ख्याल है, पहले बच्चे के अंदर जो आपके अहवाल थे, चौथे बच्चे के ऊपर वही अहवाल रहेंगे। कल हम घर में यही बात कर रहे थे। ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी बेटी है, तो जब वो थी छोटी थी तो हमारे कैसे मामलात होते थे, और अब जो चौथी माशाल्लाह आ चुकी हैं, तो अब क्या हमारा हाल होता है। ठीक है ना, तो फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है एक बच्चे के साथ और चार बच्चों के साथ। ठीक है ना, तो जिम्मेदारियों के बढ़ने से ना इंसान के अमाल पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके पास उतना टाइम और इतनी फिक्रें, इतनी सोच का वक्त नहीं होता आपके पास, फिर तो इस वजह से ना आपके अमाल जो है वो घटने शुरू हो जाते हैं, जाहिरी अमाल। लेकिन दिल की कैफियत जो है, अगर आप इखलास के साथ अपना सफर कर रहे थे, सफर आपका जारी था, तो ये आपका जो दीन है ये सिर्फ जाहिरी सुन्नतों की हद तक नहीं रहता, बल्कि ये इखलाकियात में भी आता है, इखलाकियात के साथ ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ ये कैफियात में भी आता है। अब ऊपर से अमाल नहीं हो पा रहे, बहुत मुश्किल से चंद जाहिरी अमाल आपके हो पा रहे हैं, लेकिन कैफियात जो आपकी बन गई है ना, दिस इज एक्चुअली प्रोग्रेस, आपने बहुत तरक्की करी अपने दीन के अंदर, लेकिन जाहिरी अमाल एक्चुअली आपके कम हो गए पहले के मुकाबले में। ठीक है ना, अब उसके बाद कभी ऐसा होता है कि जी कोई दूसरा शख्स आकर के जो आपको देख रहा होता है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, दो बातें ये हो सकती हैं कि एक तो आप पूरा ना ریاکاری کے طور پر اس کو خالی خوش کرنے کے لیے اس کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مجھے برا سمجھے گا اور جو ہے وہ میری کیا عزت رہ جائے گی. لیکن ایک دوسری بھی سوچ ہے، یہ بھی سوچ تو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے نا، اخلاص والوں کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ بھائی اگر وہ مجھے کوئی چیز کم کرتا ہوا دیکھے گا نا، تو وہ اگر مجھ سے بدگمان ہوگا نا، تو یہ بدگمانی جو ہے یہ خالی میری ذات تک نہیں رہے گی بلکہ یہ دین تک پہنچے گی. کہ دیکھو دین میں اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں اور اتنا بھی نہیں کرتے، رائٹ، اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں کرتے یا اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے نقصان یعنی اس کی خیر خواہی کی وجہ سے آپ اس ظاہری سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خیر خواہی کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو احسن چیز ہے کہ اس کی دین کی حفاظت کے لیے، اس کی خیر خواہی کی وجہ سے آپ نے اگرچہ کہ وہ اعمال نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ریاکاری کو کرب کریں اور خیر خواہی کو اپنے اندر ایسے ڈیولپ کریں تاکہ ہم اس طرح کی سچویشن کے اندر پھر خیر خواہی کی وجہ سے کام کیا کریں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ان نیچرلی آپ نہیں کر سکتے نا، آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اتنے آپ کے پاس کیا، آپ ساری سنتیں جو پہلے عمل کرتے تھے وہ آپ ساری سنتیں بعد میں بھی کرتے رہیں. ایک وہ حضرت جی کے جو چھوٹے پرزند ہیں ان کے ساتھ پچھلے ہفتے ہی آج بیٹھا ہوا تھا، تو باتیں ہو رہی تھیں بدگمانی کے ٹاپک کے اوپر بھی باتیں ہو رہی تھیں، تو بات نکلی کہ بھائی مرید جو ہے نا وہ شیخ کے ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بدگمانی بھی چل رہی ہوتی ہے، اوپر اوپر سے صحبت، اندر اندر سے بدگمانی، بہت ہوتا ہے یہ. بلکہ شیخ کے جتنا قریب آتے ہیں نا بدگمانی اتنی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، شیخ صاحب بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ کوئی خدا کو تھوڑی ہے کہ پرفیکٹ ہوں گے، رائٹ. تو شیخ کے قریب آنے سے پھر شیخ کی امپرفیکشنز نظر آنی شروع ہوتی ہیں، تو بدگمان ہو جاتے ہیں پھر شیخ کے بارے میں. تو پھر ان کے حضرت جی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہاں ایک صاحب جو ہے نا مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں حضرت جی کی خدمت میں رہتا ہوں تو حضرت جی جو معمولات بتاتے ہیں نا تو ان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی. لیکن میں اتنے دنوں تک خدمت میں رہا، میں نے تو حضرت کو ایک دفعہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا. تو میں بدگمان ہو گیا کہ بھئی یہ کس قسم کے، کسی کو لوگوں کو کچھ کہتے ہیں اور اپنے عمل میں کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح میرے دماغ میں چلتا رہا، اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ ہم جو حضرت کے کمرے میں فجر کے بعد سو جایا کرتے تھے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم جب اٹھتے تھے تو اس وقت تک حضرت بھی اٹھ چکے ہوتے تھے، پھر ظہر کے لیے تیاری وغیرہ کر رہے ہوتے تھے. ایک دن میری آنکھ جو ہے وہ تھوڑی جلدی کھل گئی، ٹھیک ہے. تو میں نے اٹھ کر کے حضرت کو دیکھا کہ حضرت اٹھے ہوئے تھے، اپنے بستر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، حضرت اٹھے، واش روم تشریف لے گئے، واش روم سے وضو کر کے پھر واپس آئے اور مجھے اشارے سے پھر سے سلا دیا، میں پھر سو گیا. لیکن پھر میری آنکھ کھل گئی تھوڑی دیر کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ حضرت بستر کے اوپر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ حضرت کا ٹائم ہے تلاوت کرنے کا، اور اس ٹائم پر تو ہم لوگ روزانہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ تلاوت کر رہے ہیں لیکن حضرت تو، یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ حضرت تلاوت نہیں کر رہے ہیں لیکن حضرت اس ٹائم پہ تلاوت کرتے تھے جبکہ ہم سو رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا یعنی انسانوں کے دلوں میں پھر بدگمانی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن جو یعنی حضرت تلاوت جو کر رہے تھے تو وہ بھی تلاوت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے نا، تھوڑی کر سکتے ہیں نا. تو معاملات لوگوں کے پھر چینج ہو جاتے ہیں، مصروفیات کے ساتھ جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے، ابتدا میں اور انتہا میں کافی تبدیلی ہوتی ہے. آج کل جو لوگ میڈیا کے معتقد ہیں، علماء کے ساتھ تعلق نہیں، انعاد ہے، دین کو مستشرقین کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو اس سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور مدارس ریفارمیشن کے متعلق لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا نتیجہ ہوگا، ہم کیا کریں؟ قریبی لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. بھائی اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا، تو اس کے لیے کوئی یعنی کوئی یونیک قسم کا، انوکھا قسم کا کوئی جواب تو نہیں ہے. بس وہی جیسے کہ ہم محنت کر رہے ہیں نا دین کی، جو ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی جس طرح سے درس کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ درس کا سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو یعنی اپروچ کیا جاتا ہے. اب اگر दर्स दे रहे हैं तो खुद दर्स दे करके अप्रोच कहलाता है, और जब खुद दर्स नहीं दे रहे होते तो जो दर्स दे रहे हैं हमारे मशायख उनकी दर्स की तरफ बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना आप यानी कलेक्टिवली लोगों को अप्रोच करते हैं, और फिर उन कलेक्टिवली जो लोग आते हैं फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा करके लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हर कोई अपनी इस्तेदाद और अपनी तौफीक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको बात समझाई जाती है, और दर्स में बात समझाई जाती है, फिर उनको क्लासेस में लेकर के आया जाता है, फिर उनको जो है वो जिक्र के रास्ते के ऊपर भी डालने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से ना फिर ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो अदरवाइज कोई एक एक जादू की छड़ी नहीं है कि आप जो है वो ऐसे लोगों के पास जा करके वो जादू की छड़ी घुमाएंगी और उनको बात समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मशाए का जो तरीका है ना इसी तरीके के ऊपर ही मेहनत करनी है हमने, ठीक है ना। और जब तक अल्लाह ताला का फैसला नहीं आ जाता कि यानी अल्लाह ताला इज्तिमाई शक्ल में ईमान वालों को तौबा की तौफीक देंगे, ठीक है ना, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि सुन्नत भी यही है, नबी अलैहिस्सलाम का भी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा था ना। फिर उसके बाद जब हिजरत का मामला आया वो अल्लाह का फैसला था कि इधर से लोगों को भेज दिया मदीना मुनव्वरा से, उन्होंने आकर के बैत कर ली, उन्होंने जाकर के मदीना मुनव्वरा के अंदर अपने खानदानों को जो है वो बड़ी तादाद में बड़े मुसलमान हो गए, ठीक है। उस वक्त तक ये सिलसिला वैसे ही चल रहा था इंडिविजुअल यानी तबलीग के तरीके पर, और हम वापस उसी दौर में आके खड़े हुए हैं, ठीक है, कि हमें उसी तरीके पर ही मेहनत करते रहना है। खवातीन में अक्सर बच्चों को लेकर सोच और फिक्र बहुत गालिब रहती है। बच्चों को लेकर सोच और फिक्र बहुत गालिब रहती है, क्या इसको भी जिक्र से ठीक कर सकते हैं? क्या मतलब बच्चों को लेकर सोच और फिक्र? यानी बच्चों के बारे में सोच और फिक्र गालिब रहती है, बच्चों की किसी खास, बच्चों की फिक्र? तो बच्चों की फिक्र से क्या मुराद है, मतलब बच्चों की शादी कैसे होगी, राइट, या बच्चों का खाना पीना कैसे होगा, कौन सी वाली फिक्र की बात कर रहे हैं ना आप? बिकॉज फिक्रें तो बहुत सारी हो सकती हैं। एक फिक्र ये भी तो है ना कि मेरे बच्चों का मरने के बाद क्या बनेगा, ये भी तो एक फिक्र ही है ना बच्चों के बारे में। तो आप कौन सी वाली फिक्र की बात कर रही हैं, लाइक वो कहीं क्या कहीं गए गए तो सेफ है क्या, कहीं गए तो सेफ है क्या, किस तबीयत तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे कल फॉर एग्जांपल किसी ने सवाल किया, ठीक है, कि हमारे बच्चे को नॉन मुस्लिम्स ने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, बर्थडे पार्टी पार्टी में, ठीक है, तो क्या हमें अपने बच्चों को उधर भेजना चाहिए? ठीक है, तो अब उनको भी तो एक फिक्र है ना कि क्या नॉन मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी के अंदर अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो अब उनकी फिक्र यहाँ पर क्या है, क्या वहाँ पे जाकर के उनकी बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, या बच्चा जो है वहाँ पर कोई अगवा करके ले जाएगा? नहीं, वो तो सऊदी अरब में रहते हैं, रियाज में रहते हैं, अगवा करने की तो फिक्र उनको नहीं है, ना उनको तबीयत खराबी की फिक्र है। उनको किस बात की फिक्र थी, क्योंकि उनसे पिछले कुछ दिनों से बात चल रही है, तो उनको फिक्र थी कि क्या गैर मुस्लिमों के साथ इस तरह से पार्टी में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो एक फिक्र है ना कि वो वहाँ पर रूहानी तौर पर सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राइट, उनकी आखिरत जो है वो सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस वजह से उन्होंने सारे से पूछ लिया, ठीक है। तो अब आप जो है वो कौन सी वाली फिक्र की बात करें, ये क्लियर करें ना, सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, थोड़ा सा क्लियर करना होता है। यानी मैं अजम्पशंस की बेसिस पे आपको जवाब दे दूँ तो वो भी एक तरीका है, लेकिन बात बनती नहीं है। अगर खाली ये है कि जी तबीयत खराब, जैसे कि उन्होंने आपकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करी है, तो वो तबीयत खराब हो जाएगी, तो अब ये तबीयत खराब हो जाने के लिए दो बातें हो सकती है ना, कि एक तो कोई जेन्युइन आपको रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, कि अगर उस जगह पर गए तो वहां पर बच्चे बीमार हैं, वहां पर जो है वो कोई ऐसा एनवायरमेंट है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये एक जेन्युइन रीजन है, कोई एक यानी एक मटेरियल कॉज है ना इसका, फिक्र का, ठीक है। लेकिन एक होता है कि ना बस ऐसे ही वो हर वक्त जिस कहते हैं ना पैरानॉइड, हर वक्त ही यानी अपनी नजरों से बच्चों को दूर नहीं करना चाहते कि बस उधर चले गए तो बीमार कहीं ना पड़ जाएं, तो ये इसको वसवसा कहते हैं, ठीक है ना, इसको तवहुमात भी कहते हैं, इसको वसवसा भी कह सकते हैं। तो जो वसवसे होते हैं तो उनका तो फिर इलाज करना पड़ता है। ठीक है, बड़े होते बच्चों के ईमान की फिक्र, हाँ तो ये भी तो एक फिक्र है ना, जैसे अभी जो नॉन मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी के बारे में सवाल था तो वो तो ईमान के ही लेवल का सवाल था ना, तो फिर उनको समझाया कि नहीं आप नॉन मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी तो क्या मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी में नहीं भेजना चाहिए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी में नहीं भेजते, ठीक है ना, लेकिन चले भी आप अगर नए हैं अभी अभी आप बर्थडे पार्टी से तो इतना नहीं कर सकते अपने बच्चों को बचाना, तो कम से कम नॉन मुस्लिम्स की बर्थडे पार्टी से तो बचाए ना। ठीक है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो उसी वक्त उनको जो जवाब दे रहे थे, तो मैं क्लास के लिए तैयारी करने के लिए तफसीर खोली तो तफसीर के अंदर वही वाला सफ़ा भी निकल गया कि काफिरों की दोस्ती जो होती है वो जुल्मत होती है, काफिरों की दोस्ती खुद जुल्मत है, राइट। अब अभी आपने कुछ गुनाह करना ही नहीं शुरू किया, वो उससे पहले ही जो है आपके लिए वो गुनाह वाली तारीकी बन जाती है, काफिरों से खाली दोस्ती रखना। तो भाई ऐसा मामला होना ही नहीं चाहिए नॉन मुस्लिम्स के साथ कि वो आपको बर्थडे पार्टी के अंदर इनवाइट करें, हर कोई को हर किसी को तो नहीं आप इनवाइट करते अपने बच्चे की पार्टी के अंदर, वो तो जिनके साथ दोस्ती होती है उसको इनवाइट करते हैं ना, तो आपकी दोस्ती है क्यों उनके साथ, ऐसी दोस्ती है क्यों उनके साथ कि वो आपको पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं अपने अपने बच्चों की, राइट। पहला तो सवाल ये होना चाहिए ना कि आपकी दोस्ती ऐसी बनी क्यों उनके साथ, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सो ऑफिसर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और वो भी हिंदू की बर्थडे पार्टी, ठीक है, और कोई सवाल? चलें ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।